महाभारत आदि पर्व पंचाशदधिक शततमोध्यायः। माता कुंती के लिए भीमसेन का जल ले आना। माता और भाइयों को भूमि पर सोए देखकर भीम का विषाद एवं दुर्योधन के प्रति क्रोध। वैशंपायनवाच तेन विक्रममाणेन उर्वेग समीरितं वनं संवृक्ष विटपं व्याघूर्णितमिवाभवत। वे सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वह संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा।
जंघा बातो बबौचास्य सुचि शुक्र गमे यथा आवर्जित लता वृक्षम मार्गम चक्रे महाबलः।
जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि काल में जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेगपूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते वहाँ की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंदकर जमीन के को बराबर कर देते थे।
स मृदूनं पुष्पितांश्चैव फलितांश्च वनस्पतिन् अवरुज्य जयो गुल्मान् पथस्तस्य समीपजान्।
उनके मार्ग के निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि होते उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंदते जाते थे।
सरोषित इव क्रुद्धो वने भंजन महाद्रुमान त्रिप्रसूत मद सुस्मि षष्टिवर्षी मतंगराड।
जैसे तीन अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
गच्छ तस्तस्य वेगेन तार्च मारुतरंगस भीमस्य पांडुपुत्राणां वृक्षेव समजायत।
गरुण और वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडुपुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी।
असकृच्चापिं संतिर्य दुर्पारं भुजप्लवैः पथि प्रच्छन्न मासे दुर्धार्तराष्ट्र भयात्तदा।
मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को जिसका पाट दूर तक फैला होता था दोनों भुजाओं के बड़े बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे।
कित्रेण मातरम चैव सुकुमारीं यशस्विनीं अवहत्स तु पृष्ठेन रोधस्सु विषमेषु च।
भीमसेन अपने सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले जाते थे।
अगमच्च वनोद्देशम अल्पमूल फलोदकम क्रूर पक्षी मृगम घोरम सायान्धे भरतर्षभ।
भरत श्रेष्ठ वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुँचे जहाँ फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहाँ क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे।
घोरा समभव संध्या दारुणा मृग पक्षिण अप्रकाशादि सर्वा वातैरा सन्नार्तवैः।
वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहाँ वास करते थे। बिना ऋतु के प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकार पूर्ण हो रही थी।
शेण पर्ण फलै राजन बहुगुल्म छुपै द्रुमैः भग्नाव भग्न भूयिष्ठै नाना द्रुम समाकुलैः।
राजन हवा के झोंकों से वन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था।
ते श्रमेण चकोरव्या तृष्णया च प्रपीड़िता ना शक्नुवंशदा गंतुम निद्रया च प्रविद्धया।
वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए।
न विसंतहिते सर्वे निरास्वादे महाबले तततिसा परिक्लांता कुंती पुत्रान था ब्रवीत।
तब उन सब ने उस निरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली,
माता सती पांडवानां पंचानां मध्यतः स्थिताम् तृष्णया ही परितात्मी पुत्रान भृशम अथा ब्रवीन।
मैं पांच पांडव पुत्रों की माता हूँ और उन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई।
तत्श्रुत्वा भीमसेनस्य मातृस्नेहात् प्रजल्पितम् कारुण्येदमनस्तप्तम् गमनायोपचक्रवे।
माता का वात्सल्य से कहा हुआ यह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे।
ततो भीमो वनम घोरम प्रविश्य विजनम महत न क्रोधम विपुलच्छायम रमणीयम ददर्श।
उस समय भीम ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला पीपल का पेड़ देखा।
तत्र निक्षिप्यतां सर्वान् वाच भरतर सब पालीयम् मृगयामीह विश्रमध्वमिति प्रभो।
राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ।
एते रुवन्ति मधुरम सारसा जलचारिण ध्रुवमत्र जलस्नानम महचेति मतिर्मम।
ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
अनुज्ञात स गच्छेते भ्रात्रा ज्येष्ठेन भारत जगाम तत्र यत्र स्म सारसा जलचारिणः।
भारत, तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहाँ ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे।
स तत्र पीत्वा पानीयम् स्नात्वा च भरतर सब तेषामर्थे च जग्राह भ्रातृणाम भ्रातृवत्सल। उत्तरीयेण पानीयाम् पानीयम् आनयामास भारत।
भरतश्रेष्ठ वहाँ पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए।
गव्योति मात्रादागत्य त्वरितो मातरम प्रति शोक दुख परितात्मा निस्वत्वासो रघो यथा।
दो कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए। उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था और वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे।
स सुप्तां मातरं दृष्ट्वा भ्रातृश्च वसुधा तले भृशं शोक परितात्मा विललाप वृकोदरः।
माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे।
अतः कष्टतरम किम नु द्रष्टव्यम हे भविष्यति यत् पश्यामि महे सुप्तां धातृनद्य सुमंद भाग।
हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया देख रहा हूँ, इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी।
सैनेशु परार्घेशु ये पुरा वारणावते नाधि जगमुस्तदा निद्राम तेद्य सुप्ता मही तले।
आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य सैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे ही आज धरती पर सो रहे हैं।
स्वसारम वसुदेवस्य शत्रुसंघावमर्दिनः कुंतिराजसुताम कुंतिम सर्वलक्षण पूजिताम स्नुषाम विचित्रवीर्यस्य भार्याम पाण्डुर्महात्मनः तथैव चास्मज्जननी पुण्डरीकोदर प्रभाम सुकुमार तरामेनाम महारह सैनोचिताम सयानाम पश्यताद्येह पृथिव्याम अतथोचिताम।
जो शत्रु समूह का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन
तथा महाराज कुंती भोज की कन्या है। समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होता आया है, जो राजा विचित्रवीर की पुत्रवधु तथा महात्मा पांडु की धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनके अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य सैया पर शयन करने के योग्य हैं, देखो आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई हैं, ये कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं है। धर्मादिंद्राच वाताच सुसवेया सुता निपान से भूमौ परिश्रांता से ते प्रासाद साहिदी। जिन्होंने धर्म इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थक कर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी है। किम नु दुखतरम शक्यम मया दृष्टुमतः परम योह मध्य नरव्याघ्रान सुप्तान पश्यामि भूतले। इससे बढ़कर दुख में मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। त्रिश्लोकेशो राज्यम धर्म नित्योर्हते नृप सोयम भूमौ परिश्रांत शेते प्राकृतवत्कतम। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोकों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मांदे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। अयम नीलाम बुध श्यामो नरेश प्रतिमोर्जुन शेते प्राकृतवत भूमौ ततो दुखतरम नुकिम। मनुष्यों में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं, इससे महान दुख और क्या हो सकता है। अश्विनाभिव देवानाम या विमो रूप संपदा तो प्राकृत वदध्ये मऊ प्रसुप्तौ धरणी तले। जो अपने रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान जमीन पर सोए पड़े हैं। ज्ञात यो यस्य नैव स्युर्विस्मा कुलपांसना स जीवेत सुखम लोके ग्राम द्रुम इवई कज। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। एको वृक्षो हियो ग्रामे भवेत् पर्ण फलान्वितः चैत्यो भवति निर्ज्ञाति अर्चनीय पूजितः। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। ऐसा च बहुशूरा ज्ञात यो धर्म माशिता ते जीवंत सुखम लोके भवंती च निरामया। जिनके बहुत से सूरवीर भाई बंधु धर्म परायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते और सुख से जीते हैं। बलवंत समृद्धार्था मित्र बांधव नंदना जीवंत्योन्यमाश्रित्य द्रुमाकानन जाइव। जो बलवान धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं के को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। वयम तो धृतराष्ट्रेण सपुत्रेण दुरात्मना विवासितान दग्धाश्च कथं चेन दैव संश्रयात। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। तस्मान् मुक्ता वयम दाहादिमं वृक्ष मुपाश्रिता काम दिशं प्रतिपश्यामः प्राप्ता क्लेश मन उत्तमम्। आज उस अग्निदाह से मुक्त हो हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना है इसका भी पता नहीं है, हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। सकामो भव दुर्बुद्धे धातराष्टल्प दर्शन नूनम देवा प्रसन्नास्ते नानुज्ञां मे युधिष्ठिर प्रयक्षति वधे तुभ्यं तेन जीवति दुर्बते नन्वद्य त्वां सहामात्यं
सकर्णानुज सौबलम गत्वा क्रोध समाविष्ट प्रेषयिष्ये यमक्षयम् किं नु शक्यं मया कर्तुं यत्तेन कुद्क्रुध्यते नृप। धर्मात्मा पाण्डवश्रेष्ठ पापाचार्युधिष्ठिर एवमुक्त्वा महाबाहु क्रोध संदीप्तमानसः करं करेण निष्पिष्य निःश्वसन्तीर्मानसः। पुनर्दीनमना भूत्वा शान्तार्चिरुपावकः भ्रातृन्महीदले सुप्तान् अवैक्षत वृकोदरः विश्वस्तानिव संविष्टान् पृथग् जनसमानिव। ओ दुर्बुद्धि अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है, तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। दुर्मते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। रे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ, किंतु क्या करूँ, पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। यो कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ से हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि पर ही निश्चिंतता पूर्वक सो रहे थे। नाति दूर एन नगरम मनादस्माधिलक्षये जागर्तव्ये सपन्ति मे हंत जागर में हम तयम पाश्यन्ति मे जनम पश्चात् प्रतिबुद्धा जितक्लमा इति भीमो व्यवस्थैव जजागार स्वयं तदा। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जागना चाहिए, ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जाकर जागरण करूं, थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पियेंगे, ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। इति श्री महाभारत आदि परवड़ी जतो ग्रीष परवड़ी भीम जलहरणे पंचाशदिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतोगृह पर्व में भीमसेन के जल ले आने से संबंध रखने वाला 150वां अध्याय पूरा हुआ।